कड़ी में आगे आप देखेंगे आज। दूसरी स्लाइड, वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। कोई व्यक्ति कितना भी शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, कितना भी त्याग करे, संसार त्यागे, दुनिया त्यागे, परिवार त्यागे, धन संपत्ति त्यागे, कितना भी यज्ञ करे, कितने भी नियमों का सफाई रखना, संतुष्ट रहना, ईश्वर की भक्ति करना, उपासना करना करे, कितने भी तप करे या और किसी भी तरह के कितने भी अच्छे कार्य करे, उसके जीवन में सिद्धि, वो अध्यात्म की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती अगर उसका चरित्र अभी भी बिगड़ा हुआ है। ये मनुस्मृति का श्लोक है। बहुत सारी बातें हैं जो आजकल हमें बताया नहीं जाता है, हमें सिर्फ पैकेजिंग बताया जाता है, अंदर के माल के बारे में आजकल कम बताया जाता है, और जिसका परिणाम है कि हम हिपोक्रेसी दुनिया में ज्यादा देखते हैं। और हमारा जो प्राचीन संस्कृति थी हमारी, हमारे जो आचार्य थे, जो ऋषि थे, जो मुनि थे, वो इन चीजों को समझते थे, दूरदृष्टि को, और इसीलिए अपने शास्त्रों में इन बातों को स्पष्ट लिखते थे, जिसको आजकल हम बोलने में थोड़ा हिचकिचा, ऐसी चीजों को हम छुपा कर रखना कोशिश करते हैं और उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं जो एक तरह के बाहरी आवरण बना जा सके। अब धीरे धीरे हम चरित्र पर कम ही बात करते हैं, मतलब मैं कितना भी बेईमान हो सकता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर रेगुलर मंदिर जाता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, सारे धार्मिक कार्य करता हूं, तो दुनिया में पब्लिक में मैं बड़ा साधु संत के रूप में व भक्त के रूप में प्रसिद्धि पाता हूं, या मैं अपने आप में इस गलत फहमी में भी पलता हूं कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरा, तुम्हारे भावनाओं में अभी भी दुष्टताएं हैं, अगर तुम्हारे तुम्हारे मन के अंदर वो बुराइयां भरी हुई हैं, इन सब चीजों को कितना भी करो, उससे तुम उस मामले में कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। ये कहानी हमने सुनी थी, किसी गांव में एक जमींदार था, पहले भी हमने बात की है, बड़ा अत्याचारी था, गांव के लोगों पर खूब अत्याचार करता था, उनके जमीनों को छीन के लेता था, सारे गांव वालों को अपने वहां मजदूर बनाता था, मजदूरी भी कम देता था और बहुत अत्याचार करता था, पर बड़ा धार्मिक था। अभी हमेशा हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, आज के जो रिलीजियस कंटेक्स्ट में बेईमान होना और धार्मिक होना दो अलग अलग चीज नहीं होता है। अगर आप बढ़िया डोनेशन दे सकते हैं, अगर आप खुद नाच कूद कर सकते हैं, खूब घर में पंडित बुला के भजन कीर्तन तपस्या यज्ञ कर सकते हैं, तो आप धार्मिक हैं, हर पब्लिक भी आपको धार्मिक मानती है। तो जमींदार भी वैसे ही था, अत्याचारी था, दुराचारी था, पर धार्मिक था, इसीलिए क्योंकि घर में पूजा पाठ, साधु संतों का सत्कार सब कुछ होता था और बड़ा आदर भाव रखता था। एक दिन एक संत गांव में पहुंचे और फकीर ने गांव वालों से सुना कि जमींदार कितना अत्याचारी है, कैसे उनके जमीन को छीन के रखा है, कैसे उन पर अत्याचार करता है, और यह भी पता चला कि जमींदार बड़ा धार्मिक है, सो कॉल्ड धार्मिक है, आजकल के धार्मिक की तरह, मतलब उसको धर्म में बाहरी, धर्म के बाहरी आडंबरों में बड़ी आस्था है, साधु संन्यासियों के प्रति भी बड़ी आस्था है। तो साधु जी उनके घर पर पहुंचे तो जमींदार ने स्वाभाविक रूप से, उसने उसकी पत्नी ने खूब सेवा की, उनको घर में बैठाया, सम्मान दिया, भोजन के लिए पूछा, तो साधु जी ने कहा मुझे खीर खाना है आपके घर में। तो जमींदार ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम खुद खीर बनाओ, साधु जी आए हैं, नौकरों से नहीं बनाना, जब घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम खुद सेवा करते हैं, नौकरों से नहीं करते। बड़े भक्तिभाव से, श्रद्धा से खीर बनाया गया, स्वादिष्ट खीर। बनाने के बाद जब साधु को बुलाया गया भोजन के लिए, साधु ने कहा नहीं कि मैं दूसरों के थाली में नहीं खाता हूं, मेरे पास अपना कमंडल है, और उस कमंडल में तुम अपना जो भी खाना बनाए उसी में दे दो। ठीक है, साधु के अपने नियम होंगे। तो जमींदार खीर लेकर आए, जैसे ही कमंडल में डालना कि देखा वो कमंडल के अंदर बहुत सारे कूड़ा कचड़ा गोबर भरा पड़ा था। जमींदार ने कहा, ये कमंडल तो बड़ा गंदा है, इसको अब मैं कैसे खीर डालूं? बोले, नहीं आप डालो, मैं उसी में खाऊंगा, जैसा है वैसे ही खाऊंगा। बोले, महाराज बड़े खीर बड़े भाव से बनाया है, बड़े स्वाद से बनाया है, अब इसके अंदर इतने कचड़े हैं, इतने गोबर है, वो तो सारा गंदा हो जाएगा, ना स्वाद भी नहीं रहेगा, तो कैसे खाओगे? बोले, लगता है तुम्हारे बड़ा अकल है, दिमाग है, पर ये दिमाग तो दूसरों के लिए यूज करता है, अपने लिए क्यों नहीं यूज करता है? तुझे इतना समझ में आता है, कूड़े कचड़े वाले कमंडल में अगर अच्छी सी अच्छी खीर भी डाला जाए तो खीर कूड़ा कचड़ा ही होता है। इसी तरह अगर तुम्हारे अंदर कूड़ा कचड़ा भरा हो तो ऊपर से कितना पूजा पाठ यज्ञ तप शास्त्र पढ़ो, साधु संन्यासियों का सेवा करो, वो कचड़ा ही होगा आखिर में। हम सबके जीवन में और हमारे समाज में ये हम ज्यादा देखते हैं कि कूड़े कचड़े वाले कमंडल लेकर के हम अच्छी अच्छी खीरी डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मनु महाराज कहते हैं, जब तक हमारा अपना जीवन शुद्ध न हो, हमारा मन पवित्र न हो, तब तक ये सारे जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो धार्मिक कृत्य है, वो हमें अच्छा तो कम बनाएंगे, उल्टा हमें और हिपोक्रिट जो है वो तो है ही, और हमें उल्टा और एक हमारे अवगुण जुड़ता है, वो है कि हम ज्यादा पाखंडी बन जाते हैं। मतलब अंदर की बुराइयों के साथ साथ भी, एक तो बुरा होना अपने आप में बुरी बात है, बुरा हो करके अच्छा दिखना ये बड़ा खतरनाक बात है। इसी को आस्तीन का सांप भी आप कहते हैं। दुश्मन से लड़ना आसान होता है, पर जो दुश्मन दोस्त के रूप में है उससे लड़ना मुश्किल होता है। बुराइयों से लड़ना आसान होता है, बुराइयां जो अच्छाइयां दिखा करके होता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है। और ज्यादातर हमारे धार्मिक परिदृश्य में ये बड़ा आज की तारीख में बहुत ज्यादा दिखता है, जो हजारों साल पहले मनु जी इसको इंगित करते हैं, इसको स्वामी जी कोट करने की स्वामी जी कोट करते हैं। अगला एक प्रसंग है, तीसरी स्लाइड में वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होम मंत्रे चै मंत्रेषु चैव हि। मनु लिखते हैं, जैसे आजकल कंटेम्पररी टाइम में भी हम वैकेशंस मनाते हैं, छुट्टियां, चार पांच दिन काम करते हैं, दो दिन छुट्टी है। प्राचीन काल में भी व्यवस्था थी, पढ़ाई लिखाई, जैसे आजकल संडे को पढ़ाई नहीं, स्कूल बंद होता है, इधर प्राचीन काल में कुछ व्यवस्था थी। कुछ कामों को आप हफ्ते में कुछ दिन नहीं करेंगे, महीनों में कुछ दिन नहीं करेंगे, हफ्ते में कुछ दिन नहीं करेंगे, पर कुछ जो ये जो वैकेशन है वो सभी काम पर अलाउ नहीं होता है। जैसे अगर संडे को छुट्टी है, वो ऑफिस का काम करना छुट्टी है, पर ये नहीं है कि आप घर का काम नहीं करेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, आप बाथरूम नहीं जाएंगे, आप नहाएंगे नहीं, ये सब छुट्टी नहीं होती है। नित्य कर्मों में कोई छुट्टी नहीं होती है। नित्य कर्म मतलब जो डेली एक्टिविटीज है। वैसे हम पिछले संडे को चर्चा कर रहे थे, जो हमारे तीन तरह के काम होते हैं, नित्य कर्म जिनको करने से कोई फायदा नहीं होता पर जिनको ना करने से नुकसान होता है, जैसे रोज सुबह उठना कि नहाना कि बाथरूम जाना, अगर हम नहीं नहाए तो उससे नुकसान होगा, बीमारियां होंगी, बदबू आएगा, नहाने से कोई फायदा नहीं होता, पर हम नहाते इसलिए कि ना नहाएंगे तो नुकसान है। नहाना एक जरूरी चीज है, जो जरूरी चीजें होते हैं वो फायदा नहीं देते, उनको ना करने से नुकसान होता है, उसको हम नित्य कर्म कहते हैं। तो जीवन में जो नित्य कर्म है उनमें कोई वैकेशन नहीं होता, उनमें कोई छुट्टियां नहीं होती है, उनको करना ही पड़ता है। इसी तरह हमारे यहां नियम था कि जो यज्ञ है, शास्त्रों का अध्ययन है, कुछ लोग धीरे धीरे परंपरा में, जैसे जो ट्रेडिशन है वो परंपरा में पढ़ के फिर उसको भी बंद करने लगे। तो मनु ने लिखा, नहीं, पढ़ने लिखने में कोई छुट्टी नहीं होती है, सच बोलने में कोई छुट्टी नहीं होती है। ये बोलने को क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आज भी आप देखेंगे दुनिया के ज्यादातर मत मतांतरों में और हमारे मत में भी, आज मंगलवार है आज मैं वो मांस नहीं खाता, मैं शनिवार को खाता हूं, मंगलवार मेरा आज छुट्टी का दिन है खाने का। तो मंगलवार ना खाने से, शनिवार खाने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे? आज गुरुवार है तो आज मैं आज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आज देखो आज गुरुवार का दिन है आज झूठ नहीं बोलता, देखो शाम का समय है झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब दिन के समय बोलूंगा। अच्छे कामों की कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है, कोई कोई मुहूर्त नहीं होता। स्वामी जी लिखते हैं, जैसे हमारे देश में आजकल बड़ा मुहूर्तों का प्रचलन चल रहा है, और जैसे जैसे हम एजुकेटेड हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही ज्योतिष पर हमारा भरोसा बढ़ता जा रहा है। ये ज्योतिष जहां से शुरू हुआ यूरोप से, वो यूरोप वालों ने तो छोड़ ही दिया, और भारत में आजकल बिल्कुल श्रद्धा भक्ति पूरी सौंप करके आजकल हम ज्योतिष के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्वामी जी लिखते हैं, आपको मुहूर्त की क्यों जरूरत पड़ती है, शुभ मुहूर्त की? बोले कोई अच्छा काम करने के लिए, दान देना है, पूजा करना है, यज्ञ करना है, घर में कुछ अच्छा काम करना है, शादी ब्याह करना है, तो मुहूर्त देखिए। अगर मुहूर्त नहीं है तो आप दो चार दिन टाल देते हैं। वैसे तो ईश्वर ने सारे दिनों को, हर दिन को, हर मुहूर्त को, हर टाइम को प्यार से ही बनाया है, किसी दिन को गुस्से में नहीं बनाया, किसी दिन को शराब पी करके नहीं बनाया। तो जितने भी दिन मुहूर्त सब ईश्वर के, अगर सोमवार को ईश्वर ने बनाया तो शनिवार को भी ईश्वर ने बनाया होगा, अगर सारे समय को ईश्वर ने बनाया, और जिसको ईश्वर ने बनाया उसमें कोई कोई पापी समय, कोई बुरा समय, अच्छा समय होता नहीं, सारे समय अच्छे होते हैं, सारे मुहूर्त अच्छे होते हैं। अगर तुम्हें मुहूर्त चुनना ही है तो ज्योतिषी से पूछा करो, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त बताओ जिस दिन में कोई गलत काम करने की शुरू करूं। अच्छे काम के लिए मुहूर्त नहीं होना चाहिए, अच्छा काम जिस दिन मूड में आया उसी दिन कर डालना चाहिए। बुरा काम के लिए मुहूर्त लेंगे तो कम से कम तो आपको दो दिन मिल जाएगा सोचने के लिए, मैं करूं ना करूं, हो सकता है दो दिन में आपका मन बदल जाए और बुरा काम से आप रुक जाए। पर हम बुरे काम के लिए किसी ज्योतिषी के पास कभी नहीं जाते, किसी पंडित को नहीं पूछते, बताओ कोई आगे कोई अच्छा मुहूर्त है, किसी को लूटना है, किसी को झूठ बोलना है, कहीं करना है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। किसी को दान देना है तो मुहूर्त देख करके देंगे, अब अगर देना ही है किसी गरीब को, किसी का भला करना है, अभी दो। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो भी हमारे दैनंदिन कार्य है, जैसे सांस लेना की कोई छुट्टी नहीं होती है, इसलिए जो भी अच्छे कार्य हैं उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको यज्ञ करना है आप रोज करो, आप पढ़ना है आपको रोज पढ़ना चाहिए। जितने भी यम नियमों की चर्चा हमने की अभी तक, जितने तरह के भी यम नियमों की चर्चा की, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। अगला देखेंगे, अग्निहोत्र एंड अदर गुड एक्शंस आर यूजफुल इवन व्हेन दे आर डन ड्यूरिंग वैकेशंस, जस्ट एज अनट्रूथ इज ऑलवेज सिनफुल एंड ट्रूथफुलनेस इज ऑलवेज ए वर्च्यू, सिमिलरली गुड एक्शन शुड बी डन इन ऑल टाइम्स, बैड एक्शन शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। जब भी अच्छा काम करने को मन करे, आप अपना घर बनाए या पढ़ाई शुरू करे या कुछ भी, किसी मुहूर्त की नहीं, कोई भी समय आपके लिए अच्छा है, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, पर जरूर आप ज्योतिषी का यूज करिए जब भी आप कोई बुरा काम करने के लिए सोचें। ज्योतिषी का रोजगार ना मारा जाए और आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, तो अच्छा उपाय यही है, बुरे काम के लिए ज्योतिषी का सलाह लिया जाए, तो उसमें दो चार दिन पंद्रह दिन आपको मौका मिल जाएगा, और आपके आपका उनके प्रति जो भक्ति है वो भी घटेगी नहीं, उनका रोजगार भी कम नहीं होगा, और कम से कम कुछ अच्छा चल पड़ेगा। इसी बहाने कुछ लोग बुराइयां छोड़, क्योंकि जब मन में कुछ बुरा भाव आता है या अच्छा भाव आता है वो हमेशा नहीं टिकता। मन तो बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़म, मन बहुत हमेशा बदलता रहता है, किस वक्त क्या मन में क्या विचार आएगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अच्छा काम मन बने तो फटाफट करिए, अब बुरा काम के लिए मन जुटे तो जरूर वैकेशन ढूंढिए, छुट्टी खोजिए बा और किसी उपाय खोजिए। अगला एक प्रसंग है, अलग अलग प्रसंगों की चर्चा है, अगला स्लाइड लगाएंगे।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।
देखिए जो हम थर्ड चैप्टर चर्चा कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के लाइट ऑफ ट्रूथ के, इसका विषय है बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो ये अलग अलग टॉपिक से छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को बचपन से देना चाहिए, उसमें ये एक शिक्षा है कि जो व्यक्ति जिसका स्वभाव है अभिवादन करना, दूसरे को रिस्पेक्ट देना, जिसका ये स्वभाव, शील का मतलब होता है स्वभाव। ऐसा नहीं कि हम किसी फायदे के लिए, किसी सोशल कस्टम के लिए हम किसी को रिस्पेक्ट दें। अगर ये हमारा स्वभाव है कि हम दूसरे को सम्मान दें, और वृद्धों पर से भी ना, और जो व्यक्ति हमेशा अपने से बड़ों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक है, आयुर विद्या यशो बलम। उसका आयु भी, उसका विद्या, उसके नॉलेज भी, उसके यश भी, और उसकी ताकत। हमेशा ध्यान रखिए, वैसे भी ये इसको आप एक ट्रिक भी मान सकते हैं या सामाजिक जरूरत भी है। और इसमें दो फायदे हैं, एक तो खुद को अच्छा बनाने के लिए, और समाज में अपने आप को सफल बनाने के लिए ये बड़ी जरूरी राज है कि हम दूसरों का सम्मान करें। और सम्मान जब करें तो आर्टिफिशियली नहीं, दिल से करें। इससे फायदा यह है कि व्यक्ति विनम्र होता है, व्यक्ति के अंदर जो मन है वो ज्यादा ज्यादा कोमल होता है, ज्यादा सहृदय होता है। दूसरी चीज है कि समाज में जो हमारे सामाजिक के जरूरत के कारण जो हमारे काम है वो आसान होते हैं। अगर आप एक हम्बल पर्सन है, आप एक विनम्र व्यक्ति हैं, आप दूसरों को सम्मान करना जानते हैं और दिल से जानते हैं, आप मुस्कुराना जानते हैं, तो आपको देखने वाला व्यक्ति, आप जिसके पास काम के लिए जाते हैं या बिना काम से किसी से मिलते हैं, आप उनके लिए ज्यादा ज्यादा सहने लायक व्यक्ति बनते हैं, जिसको वो सुन सकता है। बहुत सारे दुनिया में व्यक्ति होते हैं जो बड़े असह्य होते हैं, असह्य मतलब अनबियरेबल, जिनको पास, जिनके पास खड़ा होना कभी कभी हमें बड़ा मुश्किल होता है। पार्टी वगैरह में भी कभी आप मिलते हैं तो बड़े जल्दी उनसे छुटकारा पाकर भागने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति विनम्र होता है वो बियरेबल होता है, वो सहने लायक होता है, आप उसके साथ घंटों टाइम बिता सकते हो, क्योंकि वो अपनी बड़ी मां बताने के लिए नहीं होता है, वो अपनी बड़ाई नहीं बखान रहा होता है या अपने अहंकार को नहीं दिखा रहा होता है। जितना व्यक्ति निरहंकारी होता है उतना वो दूसरे को सम्मान देना जानता है। जितना आप दूसरे को सम्मान देते हैं या खुद विनम्र बनते हैं, आप दूसरों के लिए इतना प्रिय बनते हैं। और जो दूसरों के लिए प्रिय बनता है उसके अपने जिंदगी में भी काम बड़े आसान हो जाते हैं। और जब आपके जीवन में काम आसान होते हैं, वो आप विद्यार्थी ज्ञान पाना चाहते हैं या धन पाना चाहते हैं या बल पाना चाहते हैं या यश पाना चाहते हैं, आपके लिए वो आसान होता है। दूसरी चीज होते हैं जो बड़ों की सेवा करता है। बड़ों के लिए हमारे यहाँ एक परिभाषा है, जो वृद्ध शब्द है, शब्द देखिए, वृद्धोपसेविना, वृद्ध की सेवा करना। वृद्ध का तो सामान्यतः हम अर्थ ले लेते हैं जो बूढ़े व्यक्ति हैं, पर संस्कृत में जो वृद्ध शब्द है वो बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है। वृद्ध का अर्थ होता है जो ग्रोन, जो बढ़ चुका है। अब हम वृद्ध से सिर्फ उम्र में बड़े व्यक्ति को समझते हैं। हमारे शास्त्रों में चार तरह के वृद्ध माने जाते हैं, ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान से आपसे बड़ा है, धन वृद्ध जो पैसे से बड़ा है, वयो वृद्ध जो उम्र से बड़ा है, बल वृद्ध जो आपसे बल से बड़ा है। बड़ा होने के लिए जरूरी नहीं कि उम्र में कोई बड़ा हो, किसी भी कारण से जो हमसे बड़ा है उनको रेस्पेक्ट देना, ये सोशल कस्टम भी है, अपने लिए भी फायदेकर है, सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अच्छा है। किसी भी मामले में जो बड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम रेस्पेक्ट नहीं देते, पर बहुत सारे लोगों की जो सम्मान है वो बड़ा आर्टिफिशियल होता है, काम निकालने के लिए होता है, या सिर्फ अपने आप को किसी मजबूरी के कारण हम करते हैं। जब ये हमारा स्वभाव बन जाए, ये हमारा शील बन जाए, जब ये हमारा सेकेंड नेचर बन जाए, तो हमें भी हम्बल बनाता है, दूसरों के लिए भी हमें प्यारा बनाता है, अच्छा बनाता है। बड़ों की सेवा करना और दूसरों को सम्मान देना, ये दो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को बहुत कुछ दिला सकता है। आप एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है, आप बाकी विद्यार्थियों के तरह जो अच्छे विद्यार्थी हैं, आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी है, वो जिज्ञासा, जानने की इच्छा है, पर अगर आप अपने टीचर को रेस्पेक्ट करते हैं तो टीचर का आपके प्रति ज्यादा अटेंशन होगा। अगर आप बेरुखे से, बदतमीजी से टीचर से पेश आते हैं तो आप उसके अंदर का जो ज्ञान कभी नहीं ले सकते, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले ज्ञान की चर्चा करते हैं। जिससे भी आप ज्ञान लेते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो हम आपके टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, बा गुरु हैं, जो जो जितने जिस तरह के भी आप ज्ञान आपको चाहिए, जिस व्यक्ति के को आपको आपको लगता है कि उस व्यक्ति के पास ज्ञान है और आप उससे लेने गए हैं, उसके पास हजारों तरह के ज्ञान होते हैं। आप एक सवाल पूछते हैं, वो सवाल का उत्तर वो आपको एक सेकेंड में दे सकता है, एक मिनट में दे सकता है, घंटों बैठा के दे सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी मनस्थिति कैसा है और वो आपको किस तरह देखता है। अगर वो सचमुच आपके ऊपर फिदा है, आपको ऊपर उसका प्यार उमड़ रहा है, तो आपको घंटों बैठा के सुनाएगा, उसके आगे, उसके पीछे, उसके प्रो, उसके आंटी, हर तरह की चीजें समझाएगा। जो उसने जाना है वो सब कुछ उड़ेल डाल सकता है, अगर उसको अच्छा लगे सुनाने में। अगर उसको दिल से वो अच्छा नहीं लगता, वो आपको सिर्फ मैकेनिकल आंसर देगा जो पॉलिटिकली राइट आंसर है, पर जिससे आपको संतुष्ट नहीं होगा। इसी तरह आप संसार में किसी भी, वो विद्या हो, ज्ञान हो, किसी भी वो धन हो, किसी भी सामाजिक जो हमारी जरूरतें, सांसारिक समस्या जरूरतें हैं, जिनसे भी आप दुकान में, जो स्टोर में जाते हैं, जो सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय होता है, खैर वो तो प्रोफेशनली ट्रेंड है कि वो आपको मुस्कुराकर बात करेंगे, वो रोबोट मशीन की तरह वो आपको पूछेंगे कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। पर अगर आप उनको मुस्कुराकर आंसर देते हैं, बड़े बड़े स्नेह से उत्तर देते हैं, उनको भी बड़ी तसल्ली होती है, वो आपसे बड़े ढंग से पेश आते हैं और ये समझ पाएंगे कि आपके प्रति उनकी जो अपनापन है वो दिखेगा। जब सचमुच आप दिल से मुस्कुराते हैं, जब आप बड़े अपनापन से उनसे बात करते हैं, दुनिया में इंसान तो छोड़िए, जो पशु पक्षी भी होते हैं ना, उनके प्रति भी आप अपनापन दिखाने लगे तो जो पागल हो जाते हैं, जो पशु पक्षी बहुत बहुत गुस्से में या पागलपन में है, उनको भी हम शांत कर सकते हैं। अगर हम अंदर से उनको वो जो सम्मान या अभिवादन की भावना, उनके प्रति अपनापन दिखाएं, तो ये जो अभिवादन का अपना बड़ा महत्व होता है जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं। वैसे दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति के कारण हर एक की अपनी अपनी तरीका है अभिवादन करने का। कहीं झुक कर करते हैं, कहीं खड़े होकर करते हैं, कहीं हाथ मिला के करते हैं, कहीं हाथ जोड़ के करते हैं, कहीं पैर छू के करते हैं। अब समय के साथ साथ बहुत सारे अभिवादन की शैली बदल रही है। पूर्व के लोग अब धीरे धीरे पश्चिमी अभिवादन शैली को अपनाने लगे, अब नमस्ते की जगह अब हाय हेलो ने ले लिया है। और यहाँ तक कि ये जो पैर छू के प्रणाम करने की परंपरा भी धीरे धीरे ऐसी विकृत होने लगी है कि वो कभी कभी शर्म भी आता है। अब वो पैर छूने की जगह घुटने छूते हैं, वो झुकने को मन ही नहीं करता है, बस पैर यहीं तक जाता है, वो घुटने से ऊपर ऊपर ही कभी कभी छू जाता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो ये तो बहुत ही भद्दी तरीके की भारतीय अभिवादन शैली है, ये जो पैर हाथ लटका के करने की, तो या तो आप पूरे चरण में गिरो, ये नहीं गिरना है, हाथ जोड़ दो या हाय हेलो कर दो, इससे बेटर है ये हाथ हिला के पैर करने की। तो खैर विकृतियां समय के साथ आती है, पर हमें वो सावधान, पर हमें ये देखना है कि जो भारतीय, ये भारतीय तो नहीं, ये केवल भारत में नहीं, पूरे जो पूर्व पृथ्वी का जो पूर्व हिस्सा है, पूरा एशिया, वो भारत से लेकर के चाइना, जापान, कोरिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया तक, ये जो पूरे पूर्व एशिया में जो अभिवादन करने की शैली थी कि झुक करके प्रणाम करना, उसका कारण हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, उसका ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हमारे यहां विनम्र होने को सबसे बड़ा माना जाता है। और यहां तक कि जो भक्ति का जो पहला नियम होता है कि आप अपने आप को सरेंडर करो, शरण करो। अभी भजन में भी आप सुन रहे थे, जो ईश्वर के शरण में नहीं गया उसको उसका शरीर बेकार गया। ये जो शरण में जाना, किसी के सामने सरेंडर करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि व्यक्ति जब तक अहम को बनाए रखता है, घमंडी रहता है, तब तक ना वो खुद के साथ जस्टिफाई करता है, ना समाज के साथ, ना ईश्वर के साथ। जितना हम कठिन बनते जाएंगे, जिसको झुकाना मुश्किल है, वो व्यक्ति वो किसी के काम के नहीं होता। इसीलिए हर धर्म में, हर अध्यात्मत्मा में ये जरूरी अंग है कि आप विनम्र बने, आप पोलाइट बने, आप झुकें। ये झुकना व्यक्ति को विनम्र बनाने के लिए होता था। प्राचीन काल में जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जो ब्रह्मचारी से जो उपनयन के बाद भिक्षा मंगवाया जाता था, उसके पीछे यही कारण था। जो मैं बार बार इसकी चर्चा करते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी कभी भी किसी जगह, उनके लिए नियम है, वो भिक्षा से गुजारा करेंगे। और भिक्षा के लिए नियम है 3 दिन से अधिक एक जगह नहीं भिक्षा मांगेंगे, 3 बार से अधिक एक व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगेंगे। इस रूल के पीछे ये नहीं था कि लोगों को बेघर बनाना था, भिखारी बनाना था। भिखारी बनाना था तो ये रूल्स नहीं होते कि भाई 3 दिन से अधिक आप एक जगह पर नहीं रुकेंगे, 3 बार से अधिक एक व्यक्ति से नहीं मांगेंगे। मतलब हमेशा आपको नए जगह पर नए लोगों से भिक्षा मांगने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अलग अलग तरह के होते हैं। जितने नए नए लोगों के पास जाएंगे, उतने आपको अहंकार को चोट लगेगा। हर व्यक्ति आपको अलग अलग तरीके से पेश आएगा। कोई आपसे बदतमीजी करेगा, कोई आपका अपमान करेगा, अलग अलग तरीके से पेश आएगा। और उनको जब हम सहते हैं बचपन से, तो हमारा जो अहम है वो चूर टूटता है, वो चूर चूर होता है। तो अपने अंदर की वो जो अहंकार का पत्थर जो टूटता है, तो व्यक्ति ज्यादा विनम्र बनता है। नमस्ते का अर्थ भी यही है, नमः ते, जो अभिवादन करने की जो भारत में परंपरा रही नमः का, तो नमन का अर्थ होता है झुकना। ते मतलब तुम्हें, तुम्हारे सामने मैं झुकता हूं। उसको थोड़ा और डिफाइन करके आजकल यहां बताते हैं कि तुम्हारे अंदर वो जो दिव्य आत्मा है, उसके सामने मेरी दिव्य आत्मा झुकती है। मुझे एक अमेरिकन व्यक्ति ने बोला कि हमारे यहाँ झुकने की परंपरा इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई आपके वहां की तरह राजा महाराजे नहीं हुआ करते, जिसके वहां हमेशा जी हजूरी करना पड़े, तो हम बड़े ऐसे शान में रहते हैं। वैसे अमेरिका कोई नया देश है, 300-400 साल का देश है, तो नेचुरली यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं रहे। पर यह कंसेप्ट समझने में गलती है। भारत में कोई, मैंने उनको समझाया, भारत में कोई राजा महाराजे को प्रणाम करता है हमें तो पता नहीं। पर यह जरूरी नियम है कि अपने माँ बाप और टीचर के सामने जरूर झुकना और पैर छूना। और वो व्यक्ति बड़ा टीचर था, तो वो बड़ा ध्यान देकर फिर सुनने लगा। अच्छा, मतलब टीचर के भी आपके वहां पैर छूते, ये बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज ही वाज ए टीचर, ये अच्छी बात है। मैंने कहा हमारे यहाँ ये रूल नहीं है कि राजा का पैर छूना व राजा को नमस्ते करना। राजा को तो अभिवादन करना डर के मारे, पर जो शास्त्रों में नियम है वो माँ बाप और गुरु और अतिथि, अतिथि मतलब अनजान व्यक्ति जो घर में आपके गेस्ट बनता है, जिसको आप जानते पहचानते नहीं, ये 4 लोगों को आपको सम्मान करने के लिए व्यवस्था थी। तो उसका बड़ा इंटरेस्ट जगा सुनने में। तो टीचर की यहां बड़ी बुरी हालत होती है, आप सबको पता है। तो जो टीचर्स को जो पता लगता है कि हमारे यहाँ ये है, तो उनको बड़ी सुकून मिलता है, बड़ा राहत मिलता है, चलो कहीं तो टीचर को कोई सम्मान है। चलिए, तो ये जो अभिवादन की परंपरा, अभिवादन की संस्कृति थी, दूसरों के सामने झुक करके ये अपने आप को उसके सामने अपने आप को छोटा बनाने की जो भावना अपने अंदर पैदा करना, ये व्यक्ति को विनम्र बनाने के लिए होता है। आप जिसके सामने झुकते हैं, जिसको आप रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी गरिमा नहीं बढ़ती है। हमेशा ध्यान रखिए, जो झुकता है हमेशा वही बड़ा होता है, जो नहीं झुकता वो कभी बड़ा नहीं होता है। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। वो पेड़ केवल झुकते हैं जिनमें फल होते हैं, बिना फल वाले पेड़ कभी नहीं झुकते हैं। फल आते ही पेड़ झुकने लगते हैं, नमन्ति गुणिनो जना, जिस व्यक्ति में कोई गुण है वही झुकता है, जो जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं वो अकड़ के रहेगा। और ये जो बादल हैं, जब बादल पानी से भर जाता है, बरसने लायक होता है, तभी वो झुकता है। अगर सूखा बादल है तो ऊपर उड़ता है। मतलब झुकना हमेशा अच्छे आदमी का, गुणी व्यक्ति का लक्षण है। जिसके सामने झुकते हैं वो बड़ा नहीं होता है, जो झुकता है हमेशा वही बड़ा होता है। हमें गलतफहमी क्या है कि मैं किसके सामने झुक जाऊं तो वो बड़ा हो जाएगा। पर समाज में, संसार में कहीं भी जो झुकता है हमेशा वही दूसरों के सामने ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगली एक चर्चा करेंगे, ये ठीक उसी से, उसका एक सप्लीमेंटरी श्लोक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। इसका अपोजिट है, दूसरों के सामने झुको, नमस्ते प्रणाम करो, दूसरों को सम्मान दो। पर कहता है जो ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी आदमी का लक्षण क्या है, कहते ज्ञानी व्यक्ति वो है जो सम्मान को जहर के समान देखे, सम्मान से दूर रहे, और जो अपमान है उसको अमृत के समान स्वीकार करे। ये वाइज मैन जो है उसका लक्षण है। वैसे बचपन से हमें, वैसे ही परिवार से व दूसरे गुरुओं से शिक्षा मिली है कि तारीफ के पीछे मत पढ़ो। जैसे जैसे आप तारीफ के को आपको अच्छा लगने लगता है, तारीफ तो अच्छा लगता है, पर हमेशा प्रशंसा ज्यादातर व्यक्ति को बिगाड़ता है, ज्यादा अहंकारी बनाता है। हो सकता है प्रशंसा से आपका गुण बढ़े, पर हम अहंकारी बनते हैं। दूसरों में ज्यादा, समाज में ज्यादातर बुरे लोग कौन होते हैं? किसी भी बुराई को करने वाला आदमी, वो चोरी करे, झूठ बोले, लोगों को मारे, बा कड़वा बोले, बा किसी भी तरह के, हर बुराई के पीछे जो आप बहुत बारीकी से देखेंगे, जो चीज काम करता है वो है अहंकार, ईगो। यहां तक कि जो अमेरिका में बात बात पर कहीं भी 10-20 लोगों को गोली चला देते हैं, उसके पीछे भी, जो बिना मतलब के किसी को भी मार डालते हैं, उसके पीछे भी ईगो है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, अपने इंडिविजुअल ईगो के नाम पर, अपने रिलीजियस ईगो के नाम पर, अपने नेशनल ईगो के नाम पर, ईगो काम करता है बुरा काम को करने के लिए। व्यक्ति जितना बुरा होता है उसका ईगो उतना ज्यादा होता है। और ईगो एक ऐसी चीज है, इतने शटल फॉर्म में होता है कि अच्छे से अच्छे आदमी भी उस बीमारी से ग्रस्त होता है। हमारी जितनी बुराइयां हैं, लालच है, क्रोध है, जो कुछ है, इनको आप किसी लेवल तक जस्टिफाई कर सकते हो। मतलब गुस्सा कभी कभी जरूरी होता है, आप जस्टिफाई कर सकते हो। सिर्फ ये एक बीमारी है जो अहंकार, जो किसी भी परिस्थिति में जस्टिफिकेशन के लेवल काबिल नहीं है। वो इंसान के लिए सबसे गैर जरूरी चीज है, सबसे अनावश्यक वस्तु है, और पर ज्यादातर लोग उससे हम ग्रस्त होते हैं। और कभी कभी तो ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, वो ज्यादातर अहंकार तो बैकडोर से ही अंदर आता है हमारे अंदर। हम जीवन में ज्यादातर जो कमाते हैं वो इसीलिए नहीं कमाते हैं कि हमें चाहिए, इसीलिए कि ईगो को सेटिस्फाई करना है। हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत सारे रिलेटिव्स चाहिए, बहुत सारे लोग हमें जानने वाले चाहिए, ये ईगो को सेटिस्फाई करने। मतलब हम जो एक्यूमुलेशन करते हैं, जो हम संग्रह करते हैं, उसके पीछे का राज है कि हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती, हमारे शरीर को नहीं मिलती है। शरीर को जितने चाहिए उतना हम बहुत पहले ही कमा चुके होते हैं। हमारे मन को उसमें नहीं मिलती, सिर्फ अहंकार को तृप्ति मिलती है कि मैं दूसरों से बड़ा दिखूं। और ये जो दूसरों से बड़ा दिखने का भाव है, जो ईगो है, ये सिर्फ संग्रह करने में नहीं कि आप बहुत से ज्यादा धन संग्रह करें, ज्ञान संग्रह करें, सम्मान संग्रह करें, यश संग्रह करें, तो आपका अहंकार बढ़ता है। ये तो इतने शटल, इतने सूक्ष्म प्रक्रिया में होती है कि छोड़ने वालों में भी उतना ही अहंकार होता है। कोई धन कमा के घमंडी है, कोई धन त्याग के घमंडी है। वो घमंडी है कि मेरे पास बहुत धनी है, दूसरा घमंडी है कि मैंने सारा धन त्याग दिया है। हमारे साधु संन्यासियों को कभी बारीकी से देखिए, कितने अकड़ में रहते हैं। सारा आपको संसार का त्याग वैराग्य सब सिखा देंगे। हमारे जो महामंडलेश्वर शंकराचार्य होते हैं वो सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, जिनके लिए संसार माया है, जो पब्लिक को समझाते हैं ये संसार माया है इसको छोड़ो, सोने के सिंहासन पर बैठेंगे। और ये कि बगल में अगर आपके राष्ट्राध्यक्ष बैठा है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी, वो उनसे छोटे कुर्सी पर बैठेगा, नहीं तो उनके अहंकार को चोट लगता है। और ये कौन है? सन्यासी है। सन्यासी मतलब जिसने अपने अहंकार को छोड़ा है। हमने कहानी सुनी थी, पहले भी शायद बताई होगी, एक खोजी व्यक्ति ढूंढते ढूंढते एक सन्यासी के पास पहुंचा, त्यागी के पास पहुंचा। आपको इसमें ढूंढना है कि सम्मान कितना जहर का काम करता है, सम्मान को क्यों जहर समझना चाहिए। वो बड़ा त्यागी व्यक्ति था, संसार को त्याग रखा था, और बड़े वैरागी व्यक्ति, और उसके फॉलोअर्स, उसके मानने वाले हजारों लाखों में भक्त थे। आश्रमों में हमेशा आना जाना लगा रहता है, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। व्यक्ति जाकर के बाबा जी से मिला, प्रणाम करके बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत त्यागी व्यक्ति हैं, आपने सब कुछ छोड़ा और जो कुछ भी आप लाते हैं वो भी समाज की सेवा में लगाते हैं, आप बहुत ऊंचे पहुंचे हुए त्यागी हैं। बाबा बड़े मुस्कुराए, यशस्वी बनो बेटे। पर बाबा मैं आपको एक बात बताऊं। ये क्या? बोले मैं और एक बाबा से मिलकर आया, वो जंगल के पास रहते, वो भी त्यागी हैं। पर क्या बात है बाबा जी, वो तो आश्रम भी नहीं बनाया। बोला ये चेले भी बेकार होते, ये भी अटैचमेंट पैदा करता है, उन्होंने तो शिष्य भी छोड़ रखा है, आश्रम बनाना भी छोड़ रखा है, झोंपड़ी में रहते हैं जी। वो थोड़े ज्यादा त्यागी लगे मुझे। बाबा का मुंह सूख गया, उदास हो गए। क्यों? मेरे से भी बड़ा त्यागी पैदा हो गया, इतना मेहनत करके त्याग किया, ये लोगों को कोई काम नहीं देगा, और बड़ा त्यागी हो गया। खोजी पहुंचा दूसरे त्यागी के पास, जिन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, आश्रम नहीं बनाया, पब्लिक को धन छोड़ने का उपदेश देख करके खुद नहीं धन इकट्ठा किया, पब्लिक को घर छोड़ने का उपदेश देकर खुद आश्रम नहीं बनाया, ऐसे एक बाबा के पास पहुंचा जो सचमुच किसी झोंपड़पट्टी में रहता है, साधना करता है, तपस्या करता है, लोगों से दूर रहता है। बोला बाबा जी आप सचमुच सन्यासी हैं, ये तो सब नौटंकी करते हैं जी, हैं? संसार छोड़ के दूसरा संसार बना डालते हैं, अपना एक और संसार बना डालते हैं, भक्तों का संसार, लाखों करोड़ों भक्त, और खुद महाराज हो जाते हैं उस बीच में, भक्तों के बीच में, और आश्रम बनाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। त्यागी आप असली त्यागी हैं, सन्यासी हैं। देखिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आश्रम में रहते हैं, झोंपड़पट्टी में, पेड़ के नीचे, जंगल से जंगल के पास, मतलब पब्लिक से दूर, आप असली सन्यासी। बाबा खुश हुए, बोले जीते रहो। बोले बाबा पर एक बात बताऊं, मैंने और एक बाबा देखा है, आप तो कुटिया बना रखे हो, उन्होंने तो कुटिया भी नहीं बना रखा है, वो तो कहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं, किसी इस पेड़ के नीचे, किसी इस पेड़ के नीचे, बस एक कमंडल हुए, दो लगोट है और कुछ नहीं। ऐसा देखा, लोग तो कहते हैं कि वो इतना बड़ा त्यागी है। बाबा दुखी हो गए। बाबा दुखी क्यों हुए? अहंकार को चोट लगा कि मेरे से भी बड़ा कोई त्यागी है। तो ये जो दुखी होना, ये अहंकार का रिफ्लेक्शन है। और अहंकार जैसे मैं, मेरे पास दो बड़ी बड़ी गाड़ी है तो भी मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे जान पहचान में उससे भी लंबी लंबी गाड़ियां हैं। मेरे पास बड़ा घर है तो भी मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे जान पहचानों में कोई इससे भी बड़ा घर है। जैसे ये अहंकार को चोट पहुंचाता है, इसी तरह त्याग, जो त्याग तो किया ही जाता है कि भाई अहंकार टूटे, पर वो त्याग के पीछे भी बैकडोर में अहंकार घुसता है, और उससे के प्रति, इसीलिए वो कठोपनिषद में जिसको कहा कि ये जो मार्ग है अध्यात्म का, ये तलवार के धार के नोक के ऊपर चलने लायक है, बहुत सावधानी से चलना है, किस तरह से अहंकार अंदर घुसता है कोई पता नहीं। और इसीलिए सम्मान को, जितना हम सम्मान से प्रशंसा से दूर रहता है व्यक्ति, उसके इतना अहंकार को बढ़ने में कम मौका मिलता है। एक इंफॉर्मेटिव बात आपको बताऊं, पतंजलि के योग दर्शन में तीसरे पाद में पतंजलि लिखते हैं, जिसका नाम है विभूति पाद, मतलब जो योगी एक स्तर तक जो पहुंच जाता है उसको खूब सारी ऐसी चमत्कारिक अनुभूतियां होती हैं, जो पब्लिक जिसको अलौकिक अनुभूतियां होती हैं, पर वो कहते हैं कि ये सारे उसके लिए बाधा है। और योगी के लिए वो नियम लिखते हैं कि जो योगी व्यक्ति है उसको हमेशा निमंत्रण आमंत्रण सभा से दूर रहना चाहिए। ये निमंत्रण आमंत्रण क्या, मतलब किसी के घर जाना, किसी के सम्मान को स्वीकार करना, किसी सभा में जाकर के माला मंडित होना, इससे दूर रहना चाहिए। ये बुरी चीज नहीं है, ये पब्लिक के लिए अच्छी चीज है, पर वो सन्यासी के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे वो जो अहंकार को तोड़ा था इतने हजारों 12-14-15 साल के साधनाओं से, योग का शुरुआत होती है चित्त वृत्ति निरोध, मन को रोकने का नाम योग है। अब मन का सबसे पहला जो जो बेसिक फाउंडेशन है वो अहंकार है, तो अहंकार को तोड़ने का नाम ही योग है। वो अहंकार का जिसको तुमने इतने मुश्किल से तोड़ा था, और पब्लिक जब तो हम पब्लिक में शो करते हैं और पब्लिक आपके पागल होती है, आपको भगवान की तरह, आपको आपके पीछे दीवाना होती है, और आप अंदर अंदर अनजाने में अहंकार को तृप्त करते रहते हो। और आज हम देखते हैं इस कंटेम्प्रेरी डे में भी हजारों जो साधु सन्यासी बाबा आचार्य लोग, जो हो सकता है शुरू में बड़े अच्छी भावना लेकर आए थे, आध्यात्मिक सिद्धि लेकर आए थे, आज वो बिल्कुल अपने भक्तों से घिरे हुए एक दूसरे भगवान बन के बैठते हैं। वो जब उनको कोई पत्रकार पूछता है आप भगवान हैं, वो मना भी बड़े दुखी होकर करते हैं। नहीं, अगर आपका अर्थ भगवान का मतलब ये है कि हर आदमी भगवान है तो मैं भी भगवान हूं, मतलब ये डिनाई नहीं करते कि मैं भगवान नहीं हूं, मतलब मैं ईश्वर में ही हूं। ये जो भयंकर अहंकार आजकल के साधु सन्यासी आध्यात्मिक बाबाओं में आपको दिखता है, ये वो समझ नहीं पाते कि उनको किस नरक में लेकर जाएगा, उनकी भक्तों की जो होगी वो तो होगी। तो इसीलिए मनुस्मृति कहता है कि सम्मान और प्रशंसा को जहर की तरह देखना चाहिए, खास करके वो लोग जो अध्यात्म में हैं, जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर हैं। अपमान को अमृत के समान समझें, जितना अपमान मिलेगा उतना अहंकार टूटेगा, उतना उनका दिल टूटेगा, वो अपने आप को उतना ज्यादा आम इंसान की तरह बिहेव करेंगे। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, जो मजदूर है, आपके घर में नौकरी का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, वो कितना दीनहीन होकर रहता है। दीनहीन समाज में रहने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम खुद के लिए और ईश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह मिटाना जरूरी है। और इसके लिए जो अध्यात्म रास्ते में जाता है उसके लिए प्रशंसा विष के समान, और जो अपमान है वो अमृत के समान है, पर इसको साधना बड़ा मुश्किल।